नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं।
जी।
शीर्षक है उपासना सच्चा समर्पण। हम कोशिश करेंगे इसके असली मतलब को समझने की।
हाँ।
क्योंकि उपासना का मतलब सिर्फ वो पूजा पाठ जो हम आमतौर पर समझते हैं उतना ही नहीं है।
बिल्कुल।
ये उससे कहीं ज्यादा है।
हाँ।
असल में ये समझने की बात है कि हम अपनी इस छोटी सी सीमित शक्ति से उस बड़ी अनंत शक्ति के भंडार से कैसे जुड़ सकते हैं जिसे हम भगवान कहते हैं।
सही।
तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो सामान्य मनुष्य की शक्ति तो बहुत सीमित है।
हाँ, रोजमर्रा के काम चलाने भर की
बस उतना ही
जीवन निर्वाह हो जाए।
लेकिन अगर कुछ विशेष चाहिए है ना, ज्यादा शक्ति ज्यादा सफलता
तो फिर उस स्रोत से जुड़ना ही पड़ेगा जहाँ से सब कुछ आ रहा है, मतलब भगवान से।
गुरुदेव ने शायद शास्त्री जी का उदाहरण भी दिया था, नेहरू जी के साथ जुड़ने वाला।
हाँ, वो सहयोग की शक्ति दिखाने के लिए कि कैसे जुड़ने से व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है।
अच्छा, तो ये जुड़ाव जिसे हम उपासना कह रहे हैं ये असल में है क्या, ये रिश्ता कैसे बनता है?
देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उपासना का मतलब है भगवान से रिश्ता जोड़ना, एक कनेक्शन बनाना। और ये रिश्ता किसी तरह की रिश्वत देकर नहीं बनता, जैसे हमने कुछ सामग्री चढ़ा दी।
हाँ हाँ, कि हमने ये चढ़ाया तो भगवान खुश हो जाएंगे,
या फिर लंबी चौड़ी स्तुतियां गाकर, मतलब चापलूसी करके भी नहीं बनता।
अच्छा।
भगवान इन बाहरी चीजों को नहीं देखते, वो देखते हैं व्यक्ति की नीयत, उसका नजरिया कैसा है,
भीतर क्या चल रहा है।
बिल्कुल। उसका चरित्र, उसका चिंतन, उसकी भावनाएं कितनी सच्ची हैं, कितनी गहरी हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े पंडित या साधु भी खूब विधि विधान करते हैं, जप तप करते हैं, पर उन्हें वो अनुभव नहीं होता, वो प्राप्ति नहीं होती,
खाली हाथ रह जाते हैं ऐसा लगता है।
हाँ, गुरुदेव कहते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका अंतःकरण ऊंचा नहीं होता, मतलब अंदर की सफाई, अंदर की सच्चाई वो कमजोर होती है।
तो बाहरी क्रिया से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिति।
बिल्कुल, आंतरिक स्थिति ही सब कुछ है।
उपासना का मतलब भी तो यही है ना, उप मतलब पास और आसन मतलब बैठना।
जी।
ईश्वर के पास बैठना, उनसे जुड़ जाना, और इस जुड़ाव का, इस उपासना का जो मूल तत्व है वो है समर्पण।
समर्पण, विलय, विसर्जन, शरणागति, कई शब्द हैं इसके लिए।
खुद को सौंप देना। गुरुदेव ने वो आग और लकड़ी का उदाहरण कितना अच्छा दिया है।
हाँ, बहुत सुंदर।
कि एक साधारण सी लकड़ी है, उसका अपना कोई खास गुण नहीं, पर जब वो आग से जुड़ती है,
खुद को होम देती है उसमें।
हाँ, तो वो खुद आग बन जाती है, आग के गुण अपना लेती है।
वही बात है, जीवात्मा परमात्मा से तभी जुड़ता है जब वो खुद को सौंपता है, उसकी मर्जी पर चलता है।
तो ये समर्पण करें कैसे, मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर व्यवहारिक रूप में कैसे हो?
देखिए, समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को अपनी मर्जी पर चलाएं कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो।
हाँ, अक्सर लोग यही करते हैं।
समर्पण है ठीक उल्टा, हम उनकी मर्जी पर चलें, उनके जो नियम हैं, जो विधान है, जो मर्यादाएं हैं, उनको समझें और अपनाएं,
अपनी मैं को उनके हवाले कर दें।
बिल्कुल। जैसे पानी की एक बूंद है, जब तक अकेली है बूंद है, समुद्र में मिली
समुद्र बन गई।
हाँ, या कोई गंदा नाला है जो वो पवित्र नदी में मिल जाता है
तो नदी का ही पवित्र जल बन जाता है।
सही। और जैसे लोहा पारस को छूकर सोना बनता है, लोहा बदलता है पारस नहीं।
ये बहुत गहरा पॉइंट है, हमें बदलना है ईश्वर को नहीं।
जी। चंदन के पास उगने वाले पेड़ भी चंदन की खुशबू अपना लेते हैं, बेल पेड़ से लिपटकर ही ऊपर चढ़ती है।
पतंग भी तो उड़ाने वाले के हाथ में डोर सौंपकर ही आसमान छूती है।
क्या बात है, कितने सारे उदाहरण हैं। दर्पण सामने रखी चीज को दिखाता है, बांसुरी वादक के फूकने पर बजती है,
खुद खाली होकर।
हाँ, कठपुतली बाजीगर के इशारे पर नाचती है, बल्ब जनरेटर से जुड़कर रोशनी देता है, नल टंकी से जुड़कर पानी, सब में एक ही बात है,
अपनी पहचान को बड़ी सत्ता में मिला देना।
वही उन्नति है, स्वयं को अर्पित करना।
और गुरुदेव एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि भगवान अक्सर देने से पहले मांगते हैं।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों मांगते हैं? ताकि हमारी पात्रता बढ़े, हमारे अंदर महानता विकसित हो। वो हमसे कोई चीज नहीं मांगते असल में,
वो हमारा अहंकार मांगते हैं, हमारा समर्पण मांगते हैं।
याद करें, कृष्ण ने सुदामा से क्या मांगा? मुट्ठी भर चावल।
जी।
राम ने शबरी से बेर मांगे।
गोपियों से दही छाछ मांगा।
कर्ण से कवच कुंडल।
बलि से तीन पग भूमि।
इन सब में मांग छोटी सी थी पर उसके पीछे समर्पण की भावना बड़ी थी।
यहाँ तक कि लैला मजनू के किस्से में भी, जब लैला ने सबूत मांगा
तो मजनू ने फौरन खून देने की बात कही, क्योंकि मोहब्बत का मतलब ही देना है।
तो ये मांग असल में हमारे अहंकार के विसर्जन की, हमारे समर्पण की मांग है। बिल्कुल सही कहा। और इस जुड़ाव की, इस समर्पण की एक कीमत भी है।
कीमत? कैसी कीमत?
कीमत ये है कि हमें अपने जो छोटे घिनौने विचार हैं, जो संकीर्ण नजरिए हैं, जो लोभ लालच है, उन्हें छोड़ना होगा, बदलना होगा, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को खत्म करके खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंपना होगा।
जैसे बीज जब तक साबुत है तब तक बीज है।
हाँ, गलेगा नहीं तो उगेगा कैसे?
गलना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा, फसल तभी बनेगी।
ठीक वैसे ही हमें अपना अहंकार, अपनी मैं को गलाकर ईश्वर से जुड़ना है।
तो सिर्फ वो बाहरी जप तप, आरती, धूप बत्ती, वो काफी नहीं है?
नहीं, वो सहायक हो सकते हैं, पर मूल चीज है कलेजा चौड़ा करके, हिम्मत करके अंदर से समर्पण करना,
आंतरिक समर्पण।
जी, और यही ये सवाल उठता है कि क्या हम इस बदलाव के लिए, इस रूपांतरण के लिए तैयार हैं? क्या ये कीमत चुकाने को तैयार हैं?
तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ यही निकलता है कि सच्ची उपासना कोई बाहरी कर्मकांड का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने कर्म, सब कुछ पूरी तरह से भगवान की मर्जी के अनुरूप ढाल देना है। एक पूरा आंतरिक समर्पण।
बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं
जी।
अगर समर्पण का अर्थ अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा में मिलाना है, तो जरा सोचें, हमारी अपनी कौन सी इच्छा या कौन सी आकांक्षा ऐसी है जिसे ईश्वर को सौंपना हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है? ये एक गहरा सवाल है।
और ये जो मुश्किल है, ये जो कठिनाई है, ये हमें उपासना के रास्ते पर हमारी अपनी स्थिति के बारे में क्या बताती है, क्या संकेत देती है?
ओम शांति।